आज बारे में बहुत सारी बातें बताई है। 1988 की ये अव्यक्तवाणी है और जो सामने परिदृश्य था उसमें एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट सेवाओं का आरंभ हुआ था, सर्व के सहयोग से सुख में संसार। तो उस प्रोजेक्ट को देखते हुए बाबा ने सबको थोड़ा सावधानियां दी, शिक्षाएं दी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, याद और सेवा के बैलेंस के बारे में बताया। तो अनेक प्रकार की बातें हैं, तन मन की थकावट क्यों आती है, उसका क्या कारण है, तो वो हम भी ये देखेंगे। तो बाबा ने कहा शक्तिशाली याद, लेकिन शक्तिशाली याद कैसे रहे वो मुरली में नहीं है, वो अलग से चिंतन करना पड़ेगा। तो शक्तिशाली याद भी हमें बनानी है। लिंक क्यों टूट जाता है, खुराक कौन सी, दो चीज़ें खुराक हैं, तो वास्तव में सेवा ब्राह्मण जीवन की खुराक है, लेकिन वो सेवा करते हुए कौन कौन से हमें स्मृतियाँ रहनी चाहिए वो भी बाबा ने हमें बताया। अगर सेवा को हम अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो क्या हो जाता है, भारी हो जाते हैं, बोझ है। लेकिन जिम्मेवारी किसकी है, वो बाप दादा की जिम्मेवारी है। जब हम अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो बॉडी कॉन्शियस में आते हैं और फिर अपना मन बुद्धि चलाने लगते हैं, उसमें ईश्वरीय शक्ति की कमी हो जाती है, अभाव हो जाता है उसका, फिर उसमें खींचातान होती है। तो जिम्मेवारी बाप की है, बाप चाहे तो किसी भी से भी सेवा करवा सकते हैं, जिस आत्मा को हम नहीं जानते उससे भी वो सेवा करवा लेंगे। जैसे एक बार एक युगल दंपत्ति, बहुत भगवान के अनन्य भक्त थे, बहुत भक्ति पाठ पूजा करते थे और वो दानी भी बहुत थे, अपने पेट का काट के भी दान कर देते थे, वो अपने पास इतना कुछ रखते नहीं थे, मना रहम दिल थे, जो भी उनके द्वार पर आता था तो खाली नहीं आता था, जितना हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अपना पूरा तन मन धन से सहयोग करते थे, भोजन कराते थे। तो ये परिपाटी लंबे समय तक चलती रही। फिर एक दिन उनके घर में कुछ भी नहीं था, चार पांच दिन बीत गए, कुछ भी नहीं है घर में। फिर दरवाजे के बाहर बैठे थे दोनों, तो वहां से एक बहुत अमीर आदमी गुजर रहा था, लेकिन उसको बहुत अहंकार था अपनी अमीरी का। तो उनकी वो दयनीय दशा देख के जो भगत थे अमीर, उनसे पूछता है कि आपके लिए मैं कुछ सेवा कर सकता हूं। तो बोला हमें भगवान पर भरोसा है, भगवान हमारी सेवा जरूर करेगा। लेकिन उस अमीर को भगवान पर भरोसा नहीं था, तो उसने कहा भगवान तो कोई होता नहीं है, शैतान, मैं शैतान हूं और मैं शैतान पर विश्वास करता हूं। तो ऐसा कह के वो चला गया अमीर आदमी। तो जब वो अपने ऑफिस में पहुंचता है, फैक्ट्री में पहुंचता है, तो वहां उसको संकल्प आता है, वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है, उसने कहा कि बहुत सारी खाद्य सामग्री एक ट्रक में भरकर फलाने जगह पहुंचा दो, और वो पूछेंगे कहना शैतान ने भेजी है। तो सेक्रेटरी उसी तरह करता है, ट्रक में काफी खाद्य सामग्री एकत्रित करके भर लेता है और वहां वो उस दंपत्ति के घर में पहुंच जाता है, ट्रक वहां खड़ा कर देता है। फिर वो दंपत्ति बाहर आती है, दोनों मियाँ बीवी, तो पूछते हैं वो खाद्य सामग्री के बारे में। तो बोले आपके लिए खाद्य सामग्री लाए हैं। तो उन्होंने ये नहीं पूछा किसने भेजी है, बोला ठीक है अच्छी बात है, हमको भगवान पर भरोसा था। तो बोला भगवान ने नहीं, शैतान ने भेजी है। बोला भगवान चाहे तो किसी से, शैतान से भी अपना काम करवा सकता है। उनके पूछ के बताने से पहले बोला भगवान पर हमको इतना फेत है कि भगवान अगर चाहे तो वो शैतान से भी अपना काम करवा सकता है। तो ऐसे ही जितने हम सेवाओं के विस्तार में जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे में बहुत सारी ऐसी विस्मृतियां हो जाती हैं जिसके कारण बहुत प्रकार के अभिमान आ जाते हैं, चाहे वो अपनी विशेषताओं का अभिमान है, गुणों का अभिमान है, अपने पद प्रतिष्ठा का अभिमान है, उसके कारण फिर तन और मन दोनों थक जाते हैं। जो आने वाले कल की मुरली है उसमें हेडिंग यही है कि थकने का कारण है देह अभिमान के तूफान। मीठे बच्चे, थकने का कारण है देह अभिमान के तूफान। जितना हम देह की स्मृति में रहते हैं तो देह की स्मृति मिट्टी की स्मृति है, नीचे लाने वाली स्मृतियां, इस संसार के ही चिंतन रहने वाली स्मृतियां, वो तो हम थक जाते हैं फिर। लेकिन जो आत्मा को शक्ति एनर्जी मिलनी चाहिए वो तो इस संसार के परे है, क्योंकि आत्मा का असली घर कहाँ है, जिस स्थान पर हमको पहुंचना है, जहां हम रहे हुए हैं, जो है ही शांति का संसार, स्वीट साइलेंस वर्ल्ड, उसकी अनुभूति करने के लिए स्मृतियों को हमें चेंज करना है, परिवर्तन करना है। तो आज की मुरली जो है तन मन की थकावट को मिटाने का साधन है, शक्तिशाली याद। तो बाबा ने कहा यह सेवा एक खुराक है ब्राह्मण जीवन की, और इस सेवा को हम कर्ण करावन हार की स्मृति से करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर हम उस स्मृति में रह रहे हैं कि कराने वाला ऊपर वाला है, वो हमारे हाथ में है, उसकी स्मृति में मैं कर रहा हूं, उसकी छत्रछाया में कर रहा हूं, तो बहुत प्रकार की छोटी छोटी बातों से बच जाते हैं। बाबा ने कहा ना आज के मुरली में छोटी छोटी बातों से बच जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, उस सेवा से बहुत दुआएं अर्जित होंगी, उस सेवा से हमको बहुत शक्ति मिलेगी, प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी। तो सेवा एक हमारे ब्राह्मण जीवन की खुराक है, लेकिन उस खुराक को भी हमको तरीके से खाना है। अगर अव्यवस्थित तरीके से हमने खा ली कभी भी खुराक, तो वो खुराक भी हमको हमारे हाजमे को खराब कर देगी। जैसे सेवा करने के बाद अगर हम कहें ये सेवा मैंने की, अगर मैं नहीं होता तो ये सेवा नहीं होती या कम होती, देखा उसको तो मैंने पहले कहा था इस सेवा को ऐसे करना चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं मैंपन जुड़ जाता है। वो सेवा हमको भारी कर देती है, बोझिल कर देती है, हमारे जो आत्मा के पंख हैं उमंग सा के उनको काट देती है। अल्पकाल की खुशी तो मिलेगी, बाबा तो मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन कच्चा फल खा लिया, और कच्चा फल खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो सेवा एक ब्राह्मण जीवन का श्वास भी है। बाबा ने कहा अपने को ईश्वरीय बंधन में बांध, ईश्वरीय सेवाओं के बंधन में बांध दो तो बाकी सभी बंधनों से छूट जाएंगे। लेकिन हम सेवा के बंधन में बांधते हैं, ईश्वरीय भूल जाते हैं। तो ईश्वरीय सेवा जो ये तो हमारे एक 84 जन्मों की प्रारब्ध का बैंक कभी खुला हुआ है, जितनी जमा करने चाहे हम जमा कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना सेवा तो बाप करवा लेंगे, लेकिन तुम बच्चों को एक का पद्म गुणा पाने का समय अभी मिला हुआ है, इसलिए बाप तुम बच्चों से करवाते हैं। ऐसे सेवा के साथ याद भी एक खुराक है, लेकिन हम खाली सेवा करते हैं, उस याद में कहीं, उस सेवा में कहीं याद कहीं छूट जाती है। याद मिश्रित सेवा हो तो उस सेवा में वो फलीभूत भी होगी, और उस सेवा का बहुतों को लाभ भी होगा, और सेवा से हमारा खाता भी बढ़ेगा, दुआएं भी मिलेंगी, बल भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी, और हम आगे बढ़ते रहेंगे, और बाबा समय पर टच भी करेगा, बुद्धि भी क्लियर होती जाएगी, और हम बहुत सारे मनोविकारों से जो ग्रसित आत्मा है उससे मुक्त होते जाएंगे, अगर हम यथार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं तो। तो आज कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे मिल रहा है? परदेशी बाप आया है अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी बच्चों से, जो विदेश में सेवार्थ गए हुए हैं। और कौन से बच्चे हैं वो? डबल विदेशी, और मीठे हैं, स्किल दे बच्चे हैं, लाडले हैं। तो बाबा जानते हैं कि ये सेवार्थ गए हुए हैं। क्यों क्यों गए हुए? उधर सेवा कौन करेगा नहीं तो, उधर अगर भारत में रहेंगे तो। बाबा अपने देश की भी स्मृति लाए कि वास्तव में असली तो आपका देश भारत देश है। भले इस देश में क्या हो गया, अभी मिट्टी वाला देश हो गया, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, लेकिन अपना देश तो अपना देश ही होता है। वास्तव में भारत जैसा मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता है। जो संस्कृतियां हैं, जानवर से लेकर मनुष्य तक, सब इकट्ठे भाग दौड़ रहे हैं। विदेश में देखेंगे तो वहां सड़कों में आपको कोई जानवर वानवर तो दिखेगा ही नहीं, है ना, सब बैरिकेटिंग लगी है तो अंदर कोई आ ही नहीं सकता है। अगर कोई जानवर देखना भी जू में जाना पड़ेगा। और अपने इंडिया में तो क्या है, जानवरों के साथ ही मनुष्य फुटपाथ पर सो जाता है। हाँ जी, हाईवे पर ट्रैफिक होता है, उसी में से अपनी गाय भी जा रही है तो अपने दूसरे जानवर भी जा रहे हैं, बड़े खुशी खुशी से जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ रॉबर्ट मूलर आए थे, ओम शांति उनमें कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो यूएन के सदस्य हैं या अध्यक्ष थे शायद उस समय, तो वो यहाँ आए थे। तो यहाँ से जब वो वापस जा रहे थे तो रास्ते में कहीं बंदर दिख रहा है, कहीं गाय दिख रही है, तो वो ड्राइवर को कहते हैं थोड़ा स्लो चलाओ, कम से कम यहाँ देखने तो मिल रहा है इंडिया में, विदेश में तो ये भी नहीं देखने को मिलता है। तो अपना इंडिया बहुत महान है। हाँ, भारत की हर चीज नियमों में बंधी हुई है ना, ट्रैफिक रूल का पालन करती है। हाँ जी, हाँ जी, और जो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल के नियम बने हम उनको फॉलो करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जाती है। तो नियम मर्यादाएं ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो भारत की महिमा है, भले धूल मिट्टी वाला हो गया है लेकिन अपना देश तो अपना देश ही है। तो ये देवी तो क्या है, देवी तो एक मिट्टी की तरह है ना। इस देश से भी बहुत दिन में बहुत धूल उड़ती रहती है, कौन सी, विकारों की धूल, चाहे वो आंखों से उड़ रही है, चाहे मुख के बोल के माध्यम से उड़ रही है। तो ये सारा ये देवी क्या हो गया है, धूल मिट्टी वाला हो गया है। तो ऐसे देश में बाबा आए हुए हैं, है ना, हमें अपनी स्मृति दिलाते, तुम कौन थे, क्या थे, कैसे थे, है ना। ब्रह्मा बाप के समान पूरे कल्प में चक्कर लगाने वाली आत्माएं हैं, अनेक जन्म अनेक जीवन बिताए हैं, द्वापर में भक्ति काल में भी तुम आत्माएं साथ में थी, तो हमें सारी स्मृतियां दिलाई। वो स्मृतियां हमको रोशन कर रही हैं, वो आत्मा को एक रास्ता दिखा रही हैं, जो हम भटक गए थे तो रास्ते पर ला रही हैं वो सारी स्मृतियां। तो मुरली समर्थ स्मृतियों से भरी रहती है, लेकिन उसको हम कौन से एंगल से देखते हैं ताकि वो हमको याद रहे। अगर मुरली को हम कहानी के तरीके से भी याद करें तो भी हमको सहज तरीके से अप्लाई करना सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर बाबा मधुबन के लिए क्या कहते हैं, अलौकिक छोटा सा संसार है, है ना, क्योंकि बाहर के संसार से तो आते हैं तो वहां तो कितनी आपाधापी है, कितनी भौतिक चकाचौंध है, कितने दुख है, मोह जाल के। कल था ना सैटरडे की मुरली में, मोह जाल के मित्र संबंधियों में फंसे हुए हैं। तो संसार के सारे जाल से मुक्त होके हम यहाँ आते हैं इस बाबा के आंचल में, यादों का आंचल, किरणों की बाहें, गीत में था ना। तो ये मधुबन भगवान की यादों का आंचल है, जैसे उसकी शक्तियों की किरणों की बाहें हैं ये। और इन बाहों में आने से हमको क्या मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। कल था ना मुरली में, दो शब्द सबको याद होते हैं, सुख और शांति। तो हम यहाँ आके वो अनुभव करते हैं। तो ये एक छोटा सा संसार है, क्योंकि यहाँ रिश्तेदारी ज्यादा नहीं है, माता पिता और भाई बहन यही रिश्तेदारी है, बाकी तो चाचा काका मामा सब ओम शांति हो गया, है ना, है वो विस्मृत हो गए। तो संसार के हम सब प्रकार के मोह जाल से मुक्त होकर इस बेहद के मधुबन बाबा के घर में आते हैं तो ये संसार अलौकिक कितना प्यारा लगता है, वंडरफुल लगता है, कितनी शांति मिलती है। क्योंकि यहाँ सबकी सोच जो ना वो एक समान है अधिकतर, भले वो छोटी छोटी बातों में जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें थोड़ी थोड़ी चलती है, लेकिन पुरुषार्थ के तरीके से अगर देखा जाए तो सोच सबकी कैसी है कि हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं, हम सब ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम सबको भी बाबा के पास जाना है, हम देवकुल की महान आत्माएं हैं, हम सभी परमात्मा छाया में छत्रछाया में पल रहे हैं, हम ब्रह्मा भोजन का सेवन करते हैं, हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो सारी मेंटेलिटी चेंज होगी है ना, क्योंकि सबकी सोच है कि जैसी है। अब सबकी सोच एक जैसी चलेगी तो वातावरण कितना पावरफुल हो जाएगा। और ये वातावरण पावरफुल कब से बन रहा है? जब से स्वयं आदि पिता ने इस धरा पर अपने कदम रखे है? तो ये मधुबन बेहद का अलौकिक संसार जो है, छोटा सा संसार है लेकिन सबके लिए सबको आकर्षित करता है, इसलिए यहां से कोई जाने नहीं चाहता। जाते समय कोई कोई एक दो दिन का और डिले कर देते हैं, है ना, कि थोड़ा और चार्ज हो जाए, थोड़ा और चार्ज हो जाए। अपना घर है ना ये, है ना। वैसे भी बचपन में बच्चे जब मेहमान मर के किसी के घर में जाते हैं, है ना, तो वहां क्या सोचते हैं, एक दिन और रह लें, क्योंकि जो फ्रीडम उनको वहां मिलेगी वहां नहीं मिलेगी। तो ऐसे मधुबन क्या है, संसार के विचारों से फ्रीडम है एकदम, जो भिखारी वायुमंडल से फ्रीडम है एकदम, स्वतंत्र है, जो मित्र संबंधियों की सुननी पड़ती है उनसे फ्रीडम है, मुक्त है। बाहर की जो ऐसा भौतिक चकाचौंध है, ऐसे दृश्य नजर आते हैं, उनसे हम परे हैं एकदम, वो दृश्य सारे ओझल हो चुके हुए। तो ये बेहद का अलौकिक संसार, प्यारा संसार, परमात्म वाइब्रेशन से भरा हुआ ये मधुबन है, इसके कण कण में परमात्म शक्तियां समाई हुई है। इसलिए बाबा तो इन चार धाम की महिमा करते हैं ना। तो ये परमात्म यादों का आंचल है, ये परमात्म किरणों की बाहें हैं ये मधुबन, तो इसका सबको आकर्षण होता है। बाबा ने कहा अगर कह देंगे अरे यहां बैठ जाओ तो अभी तो बोलेंगे बैठ जाएंगे ठीक है लेकिन उस समय सेवा का पूरे विश्व को संदेश देना था, तो नया प्रोजेक्ट जो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, तो उसमें विदेशी भाई जो अनन्य रतन थे, महारथी थे, सब आपस में बैठ के मीटिंग करते होंगे, लेकिन मीटिंग करते करते रात को 12 भी बजा देते थे। तो बाबा की दृष्टि गई उनके ऊपर, तो बाबा ने कहा थोड़ा कंट्रोल करो, 12 के लिए थोड़ा पहले सो जाओ, नहीं तो उसका इफेक्ट और ही उल्टा हो जाएगा। भले सेवा के बारे में सोच रहे हैं लेकिन वो देखो वो सेवा ही हमको कहीं ना कहीं फिर कमजोर कर देती है, रिफ्रेश नहीं होंगे, अमृत वेला रिफ्रेश नहीं होगा। सेवा तो वास्तव में रिफ्रेशमेंट का साधन है, बाबा ने कहा ना रिफ्रेशमेंट का साधन है, लेकिन वो रिफ्रेश होने के बजाय और ही क्या होगा, सुस्ती आलस्य से आएगा, क्योंकि हमने टाइम को टाइम मैनेजमेंट के अनुसार नहीं चल रहे हैं। जो भी एक अनुशासित दिनचर्या बनी हुई है उसके अनुकूल नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए फिर क्या होता है, थकान होगी, थकावट होगी। तो टाइम का बहुत महत्व है इस ब्राह्मण जीवन में, इसलिए जो भी दिनचर्या बनी है, सामान्य दिनचर्या जो बनी है, पहले उस दिनचर्या के ऊपर हम एक्यूरेट उतरे, खरा उतरे, तो फिर उससे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे बाबा ने बोला अचानक 2 बजे भी आंख खुल सकती है, लेकिन पहले जो हमारी सामान्य दिनचर्या है उस पर पूरा एक्यूरेट चलने का प्रयास करना है, ताकि हमारी शक्तिशाली याद निरंतर बनी रहे। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपको कहा जाए यहां बैठ जाओ तो बैठेंगे, या संकल्प चलेगा कि सेवा कौन करेगा? बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात एवर रेडी, और जो भगवान की मत में श्रीमत में मिक्स ना करे उसको क्या कहते हैं, आज की मुरली में उसको क्या कहते हैं, डैश डैश डैश। जो भगवान ने कहा यहां बैठ जाओ तो उन्होंने कहा हां जी, ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, हाँ आज्ञाकारी। और दो शब्द और हैं अभी, डैश आज्ञाकारी डैश, सच्चा आज्ञाकारी बच्चा, उसको कहा जाता सच्चा आज्ञाकारी बच्चा, जो बाप की श्रीमत पर चले। तो जो तुरंत श्रीमत को अमल में लाते हैं वो हैं सच्चे आज्ञाकारी बच्चे। तो बाबा हमको देखो हर चीज का चलने के लिए कैसे टाइम के बारे में बता रहे हैं, कि बैलेंस करो हर चीज का, टू मच नहीं चले जाओ उसमें, टू मच में जाने से एक तरफ जाएंगे दूसरी तरफ छूट जाएंगे। लेकिन यहां तो हमको चारों सब्जेक्ट कवर करने हैं, चारों अनिवार्य हैं, चारों सब्जेक्ट में हमको पारंगत होना है, एक में कमी नहीं, क्योंकि हम सभी सृष्टि के ऑलराउंडर पार्टदारी हैं। तो हर एक सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न किसी एक सब्जेक्ट से नहीं बनेंगे, चारों सब्जेक्ट को यथार्थ तरीके से हमको अमल में लाने की जरूरत है। तो हम उसका अनुसरण करने के लिए बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, सेवा का प्लान तो बना लिया हमने रात तक, लेकिन सूर्य अमृत वेला हमारा कमजोर हो गया, ताकत भरी नहीं आत्मा में, शक्ति भरी नहीं है, वो टाइम पास हो गया। तो बताया ना, अगर पौना घंटा भी करो एक घंटा भी करो लेकिन पावरफुल याद होनी चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हाँ कुछ हमारे में एनर्जी भरी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए हाँ थोड़ी थकावट होगी जाके थोड़ा 2 मिनट आंख बंद कर ले जाके, नहीं, भले 4 बजे 3:30 बजे 4 बजे उठो, लेकिन पावरफुल याद हो उसमें। तो बैलेंस बहुत जरूरी है, और जो बच्चे बैलेंस रखते हैं उनको क्या होता है, ब्लेसिंग मिलती है। कितनी डैश ब्लेसिंग मिलती है? पद्म गुणा नहीं, पद्म गुणा कहीं सेवा के लिए बाबा ने बोला। कितनी ब्लेसिंग मिलती है? एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलती है। तो बाबा की ब्लेसिंग मिलती है क्योंकि हमने बाबा का कहना माना है, जो उन्होंने दिनचर्या बनाई है उसके अनुसार चलते हैं, क्योंकि जो दिनचर्या मर्यादाएं हैं ये हमें बहुत शक्तिशाली बनाती हैं, डिसिप्लिन रखती हैं हमारे जीवन को, है ना। संसार में बड़े बड़े जो महान आत्माएं हुए हैं तो डिसिप्लिन उनकी लाइफ थी। तो हमें देखना है जो भी हमारी दिनचर्या है उस दिनचर्या के अनुकूल हम बैलेंस रख रहे हैं। तो अमृत वेला हमको बहुत शक्तिशाली करना है क्योंकि हमारे जीवन का फाउंडेशन है ये, हमारे सारे दिन का जो दिनचर्या उसका फाउंडेशन है ये। तो अमृत वेला अगर 2 घंटे भी हम पावरफुल कर ले, माना 22 घंटे का, और खाली अमृत वेले नहीं, उसके लिए हमको सारे दिन में भी अटेंशन रखने की जरूरत है। बाबा ने कहना उसके लिए अटेंशन, बीच बीच में क्या करो, 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में 1-1 मिनट। जैसे कैसे, जैसे डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, दवाई देते हैं ना, है ना, जब डॉक्टर वो चिटकी की दवाई लिखते हैं तो अगर दिन में 3 बार खानी हो तो कैसे लिखते हैं पता है, 1-1-1, और अगर दोपहर को खानी हो गोली तो 0-1-0, और रात को खानी हो तो 0-0-1। तो ये सबको थोड़ा याद होना चाहिए, है ना। तो ऐसे हमको सारे दिन में कितनी गोलियां खानी है, विटामिन, बाबा ने कहा ना विटामिन, कौन कौन से विटामिन, ABC सब समाये हुए शक्तिशाली आदमी। तो ये बाबा के याद के विटामिन हमको निरंतर खाते रहना है। विटामिन कौन से हैं, सोमान जो ये सारे विटामिन है, स्मृतियां समर्थ स्मृतियां हमारे लिए विटामिन है, हमारे लिए दवाई का काम करते हैं, खुराक का काम करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, तरोताजा करते हैं। तो रिफ्रेशमेंट रहने के लिए हमको बीच बीच में ये विटामिन की गोलियां लेते रहना है, और वो विटामिन खुद ही तैयार करने हैं, है ना। तो कौन कौन से विटामिन, बाबा ने कहा बच्चों को, बच्चों की सेवाओं को देखकर लगता है कि बच्चों की थोड़ी क्या कर दूं, मालिश पालिश कर दूं। तो अभी सभी 1 मिनट अपने अपने मालिश करेंगे, सभी सभी अपना दायां हाथ अपने सिर पर रखो, और ये सोचो ये बाबा का हाथ है, है ना, ये बाबा का हाथ है, और इस हाथ से परमात्म शक्तियां सारी मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। ओम शांति। तो ऐसे नींद भी नहीं आएगी, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे स्थूल में प्रयोग करने हैं, एक है सूक्ष्म में, लेकिन सूक्ष्म में जाने से पहले स्थूल में जरूरी है, है ना। दूसरा प्रयोग करना है, जैसे ये हाथ हैं, मैं सूक्ष्म बतन में बैठा हूँ, बाबा ने मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, है ना, बाप दादा दोनों बैठे हुए हैं, और सारी एनर्जी मुझ में फ्लो कर रहे हैं, हर नस नस में परमात्म एनर्जी मुझ मेरे में जा रही है, मुझ आत्मा में जा रही है, मेरी सारी बीमारियां खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि शरीर का भी शुद्धिकरण अनिवार्य है। जितना हमारे शरीर का भी शुद्धिकरण होगा, ये देह रूपी घर भी स्वच्छ होता जाएगा, और स्वच्छ घर में ही स्वच्छ आत्मा का निवास होता है, ऐसा संसार में भी कहा जाता है। तो अपने देह का भी प्यूरिफिकेशन करना है, शुद्धिकरण करना है। तो बहुत सुंदर ये बाबा ने जो आज मुरली में कहा मालिश करो, तो ये प्रयोग करना अपने आप ही, जैसे बाबा ने हाथ पकड़ा है और एकदम पुल करंट आ रहा है, जैसे है ना, सारी कर्मेंद्रियां जैसे शीतल होती जा रही हैं, उनमें से सारे विकार खत्म होते जा रहे हैं, भस्म होते जा रहे हैं। तो ये समर्थ स्मृतियां रखनी है। मुरली में से कुछ एक ऐसे पॉइंट निकालने हैं जो योग के विजन में हम उसको परिवर्तन कर दें, ताकि मुरली थोड़ा याद रहे, वो मुरली हमारे में जैसे समा जाए, नहीं तो वो वहीं तक सीमित रह जाती है। इसलिए सारे विटामिन खुद ही तैयार करने हैं, है ना। तो अभी हम 21 विटामिन खाएंगे, उनका सेवन करेंगे, है ना। तो सबसे पहला है योग को शक्तिशाली बनाने के लिए, जैसे बाबा ने 3 बोला, ABC, तो ए अर्थात मैं अशरीरी आत्मा हूं, है ना, ये देह से बिल्कुल अलग हूँ, अशरीरी हूँ, महसूस करना है। अशरीरी समझते ही कहाँ चले जाएंगे हम, परमधाम में चले जाएंगे, उस संसार की स्मृति आएगी। जो भी हम शब्द बोलते हैं, जैसे अगर हम किसी शहर का नाम ले दिल्ली, तो हमारा मन बुद्धि कहाँ चला गया, दिल्ली। और जिस जिसके रिश्तेदार दिल्ली में है ना, वो सारे याद आ गए। अभी हमने रिश्तेदार की तो बात नहीं की है, लेकिन वो कैसे याद आ गए। तो जैसे हम शरीरी संकल्प करते हैं, ये संकल्प हमको सीधा घर पहुंचा देता है। ऐसे हर संकल्प के साथ में बहुत लंबी एक श्रृंखला जुड़ी होती है। तो पहला है, मैं अशरीरी आत्मा हूं, एकदम बॉडी से डिटैच हो जाना। दूसरा, बी विटामिन बी बीज रूप है ना, मैं बीज रूप आत्मा हूं। जैसे अब ये शरीर है, तो ये शरीर भी एक वृक्ष है, ये इसमें मैं आत्मा बीज रूप हूं, ये वृक्ष की शाखाएं हैं सारी, है ना। उसी तरह बाबा बीज रूप है, तो ये सृष्टि उसके लिए सारा वृक्ष की तरह, कल्प वृक्ष का बीज रूप शिव बाबा है, तो मैं आत्मा भी मास्टर बीज रूप हूं, परम धाम में रहने वाली हूँ, बीज रूप बाप के साथ रहने वाली हूँ, विटामिन सी कंबाइंड रूप हूँ, उसके साथ कंबाइंड हूँ, जो शक्तियाँ उसमें भरी हैं मैं उसका बच्चा हूँ, तो सारी शक्तियाँ मुझ में भी भरी हुई हैं, जो गुण उसमें भरे हुए हैं वो सारे गुण मुझ में भरे हुए हैं, क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ, उसने मुझे इस संसार में रचा हुआ है, उसने ब्रह्मा मुख के माध्यम से मेरी रचना की है, है ना। क्योंकि किसी इंसान की नहीं, ब्राह्मण मुख वंशावली है, शिववंशी, तो कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना है। तो जैसे कंबाइंड हो जाएंगे, जैसे बिजली को हाथ लगा दो क्या होगा, मर जाएंगे। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे कंबाइंड होंगे, तो इस संसार से मरजीवा हो जाएंगे, सारी स्मृतियां खत्म, ऊपर की स्मृतियां आएंगी, मरजीवा आप मुझे तो मर गई दुनिया, क्योंकि सारा खेल तो गुप्त में चल रहा है, दिखाई थोड़ा किसी को देगा, अंदर से खेल चल रहा है, मैं कंबाइंड हो गया हूं। अब कंबाइंड तो इस संसार की कोई स्मृति नहीं, ऊपर है। फिर नेक्स्ट है डिटैच, कार्य करते करते बीच बीच में डिटैच होने का अभ्यास करना है, इस बॉडी से डिटैच होना, भले वो सूक्ष्म रूप में भी हो सकते हैं, जैसे बाबा कहते हैं चार धाम का चक्कर लगाओ, भले हम सेवा में कर रहे हैं या डिपार्टमेंट में बैठे हुए, कहीं बैठे हुए हैं, तो वहां बैठे बैठे बॉडी से डिटैच होकर सूक्ष्म काया के माध्यम से शांति स्तंभ पहुंच गए, बाबा की कुटिया पहुंच गए, हिस्ट्रियाल में पहुंच गए यहाँ पर, और बाबा का कमरा पहुंच गए, जैसे बाबा यादों के आंचल में हमको समा रहा है, परमात्म किरणों की बाहों में समा रहा है, कितना सुंदर गीत है वो। तो डिटैच होने का करना है। नेक्स्ट, मैं एनर्जेटिक सोल हूं। क्यों एनर्जेटिक सोल हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाने वाला कौन है, वो शक्तियों का सागर है, वो परमात्म शक्तियों का सागर है, वो हर समय वो परमात्म शक्तियों से वो भरपूर है, वो तो भंडारा वो बह रही है निरंतर उससे परमात्म शक्तियां, मैं उसकी संतान हूं, तो निरंतर एनर्जी मुझ आत्मा से फ्लो होती जा रही है, और वो तो होती ही है सभी से, चाहे जो नेगेटिव सोच रहा है उससे नेगेटिव एनर्जी फ्लो होगी, पॉजिटिव सोच रहा है पॉजिटिव होगी, प्योर सोच रहा है प्योर थॉट सोच रहा है प्योर एनर्जी फ्लो होगी, हमारे अर्थात निरंतर वाइब्रेशन, तो हम आत्माओं से हमारी बॉडी से निरंतर वाइब्रेशन प्रवाहित होते ही रहते हैं, बहते ही रहते हैं, है ना। नेक्स्ट, फरिश्ता हूं, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, तो फरिश्ते वाला प्रयोग हमने किया कि बाबा के पास गए, है ना, ऐसे बाबा ने सिर पर हाथ रखा या हाथों में हाथ पकड़ा या बाबा के सामने बैठ के, तो बाबा की आंखों से लाइट आ रही है, मेरी आंखों में समाती जा रही है, मेरी आंखें शुद्ध होती जा रही हैं, मेरी दृष्टि दिव्य बनती जा रही है, मेरी दृष्टि प्योर बनती जा रही है, मेरी दृष्टि विशाल बनती जा रही है। बाबा ने कहा अंत में ऐसा समय आएगा आपकी दृष्टि से अनेक रोगियों की बीमारी भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो हमें रोग लगे हुए कई प्रकार के उनको खत्म करना है। हियर नो एबल, सी नो एबल, डू नो एबल, टाक नो एबल, ईट नो एबल, रीड नो एबल, कितने ईवल हैं, ईवल ही बन गए सारे हम। तो कौन सा बताया, फरिश्ता, तो हम अव्यक्त फरिश्ते हैं, लाइट का बतन है वो। बाबा ने कहा साधन तो यहाँ भी हैं, लेकिन आपको ये संसार के साधनों को संभालने में मुश्किल लगती है, बताया ना सवेरे तीन तीन चार चार मोबाइल होते हैं, कौन सा बज रहा पता नहीं चलता है, या तो माता ने वो पर्स में डाला होता है, आजकल पर्स को जेब में तो बहुत होती है ना, अब पता नहीं कौन सी जेब में डाला हुआ है, पहली जेब खोली तब तक मोबाइल बंद हो जाता है, फिर बजता है दूसरी जेब खोली उसमें भी नहीं है, तब फिर बंद हो जाता है, फिर चौथी में पहुंचता जाके फिर खुद बंद करना पड़ता है। तो आजकल के साधन जो हैं भवानी का ऊपर, तो कौन से साधन है, लाइट के, और यहाँ प्रकृति के साधन है, और ये प्रकृति के साधन तो परिवर्तन होते रहते हैं, और ये सत्य और रज तमो में आते हैं, लेकिन वो लाइट के साधन है, वो सुखदायी साधन है। तो बाबा वहाँ हमारा रिकॉर्ड देखते रहते हैं, कौन सा, याद और सेवा का, है ना। बच्चों की थकावट याद वाली तो नहीं है, बाबा ने कहा ना याद के चार्ट में थकावट मिक्स नहीं होनी चाहिए, इसके लिए विशेष अटेंशन रखो, अर्थात जितना हम याद करते हैं एक्यूरेट याद, टाइम वाली याद नहीं होनी चाहिए। टाइम माने जैसे ठीक है बाबा अपना चार्ट तो रखना है, लेकिन शक्तिशाली याद का चार्ट रखना। ऐसा नहीं हमने 8 घंटे का लक्ष्य रखते तो किसी ना खींच 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 के 8 घंटे योग कर ही दिया, बस पूरा हो गया काम, उसमें खुशी नहीं मिलेगी हमको, आंतरिक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। कहा ना बाबा ने कि नॉलेज है सर, प्राप्तियां भी हैं, सेवा का बल भी है, लेकिन फिर भी जो अंदर में रहता है कि जो होना चाहिए वो याद का चार्ट नहीं है, अंदर में रहता है गिल्ट कॉन्शियस। तो थोड़ा करें, थोड़ा खाएं, लेकिन शक्तिशाली खाएं। ऐसा नहीं इतना खा लिया, कुछ भी खा लिया और पेट गड़बड़ करता रहे, गुड़गुड़ करता रहे बीच में। तो शक्तिशाली खाना है, परमात्म भोजन है, ईश्वरीय ज्ञान है। थोड़ा सा पढ़ना, उस पर चिंतन करना, उसको आत्मसात करना, अप्लाई करना, वो हमारे जीवन का अविनाशी अंग बन जाए, है ना। तो कौन सा विटामिन खाया, फरिश्ता, है ना। नेक्स्ट, आई एम ग्रेट सोल, है ना। ये सोमान जो है हमें जागृत कर देते हैं, अंदर में जो चेतना सोई होती है उसको झिंझोड़ देते हैं एकदम। क्यों ग्रेट सोल है, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा हुआ है, इस संसार को परिवर्तन करने के लिए उसने हमको निमित्त बनाया है। हमारे में पद्मा पद्म विशेषताएं देखी होंगी, और हमको तो अपनी विशेषताएं, क्योंकि संकुचित दृष्टिकोण है ना, उसकी महसूसता नहीं होती है। हम संकुचित दृष्टिकोण से अपनी विशेषताओं को देखते रहते हैं, या अपने जो हीन भावनाएं हैं, गिल्ट कॉन्शियस है, अपनी कमी कमजोरियां, उन्हीं का रोना रोते रहते हैं कि मेरी तो ये कमी जाती नहीं है, मुझे क्रोध बहुत आता है, बुरी सोच भी चलती है, क्या करूं, दृष्टि पर कंट्रोल भी नहीं है, जी पर भी कंट्रोल नहीं है, यही सोचते रहते हैं। ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो अच्छाइयां उनके बारे में सोचो, अपनी अच्छाइयों का अपने बारे में सोचना है, विशेषताओं का। पिछले संडे की मुरली में था ना, विशेषताओं का झंडा बाप लहरा रहे हैं, तो भगवान विशेषताओं का झंडा लहरा रहे हैं और हम कमियों का झंडा लहरा रहे हैं, बताओ। तो अपनी कमियों से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसी की टेंशन हमारे लिए हमारे पुरुषार्थ को रोक देती है, थकावट बन जाती है, हमारे थकावट का कारण बन जाती है, तन मन को थकाने का कारण बन जाती है। तो अपनी कमियां, हाँ, टेंशन रखना है, लेकिन टू मच उनको पकड़ के नहीं बैठ जाना, अपनी विशेषताओं पर फोकस करो, सबकी विशेषताओं देखो। जब हम अपनी विशेषताओं को देखने लगेंगे तो ही दूसरों की देख सकते हैं, डायरेक्ट दूसरे की विशेषताएं इतनी, हाँ, अगर डायरेक्ट दूसरे की विशेषताएं देखेंगे तो भी गिल्ट कॉन्शियस पैदा होगी कि इसमें तो ये गुण है, मेरे में तो है ही नहीं। इसलिए अपने को कम नहीं समझना है, हर आत्मा अपने आप में यूनिक है, विशेष है, क्योंकि भगवान की दृष्टि पड़ी हुई है। तो याद को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सा विटामिन, फरिश्ता, ग्रेट सोल। नेक्स्ट है, ईश्वरीय मर्यादाओं का मैं पालन करता हूं, है ना। ईश्वरीय मर्यादाओं से हमको भगवान ने सजाया हुआ है, ईश्वरीय मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया हुआ है, तो उनका हम पालन करने वाले हैं। जैसे बाबा ने कहा एक एक मिनट में, एक एक घंटे में एक एक मिनट शक्तिशाली याद, तो ये ट्रैफिक कंट्रोल कितने अच्छे बने हुए हैं, बताया। वो गाय भी कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल का नियम का पालन करती है, वो विदेश में हैं, विदेश में देखा कोई कोई वीडियो आते हैं छोटे छोटे, तो जो बतखें हैं वो वहाँ रुक जाएंगे, जैसे रेड लाइट सामने रुक जाएंगे, उधर ही रेड लाइट खत्म होगी तो ही क्रॉस करेगी। तो पशु पंछी भी ऐसे हैं, और हम तो देवकुल की महान आत्माएं हैं, हैं, तो हमारी तो मर्यादाएं कितनी डिसिप्लिन होनी चाहिए, भगवान के कहने पर भी नहीं सुधरते कितनी ताकतवर आत्मा है हम, कम थोड़ा नहीं है हमको पढ़ाने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा, कोई मनुष्य नहीं सुधार सकता, है ना। तो नहीं सुधर रहे, हमको नहीं दिखाई दे रहा वो, हम लोग बहुत सुधर गए हुए हैं। तो ईश्वरीय मर्यादाएं जो है हमारे जीवन को बहुत शक्तिशाली बनाती हैं। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी योगी हूं, है ना। जो भी हम सोमान लेते हैं, उस सोमान के साथ में एक दृश्य क्रिएट कर देना स्वयं, जैसे ये शरीर नहीं है अभी, ये पूरा एक ज्वालामुखी है, एक पहाड़ की तरह है, और इन आंखों से लावा फूट रहा है, यहां से भी लावा फूट रहा है, और उससे क्या हो रहा है, सारे संसार के विकर्म दग्ध होते जा रहे हैं, है ना। मनोवृत्तियां जो है हमारी, विकारी मनोवृत्तियां, विकृतियां सब समाप्त होती जा रही हैं, जन जन के विकर्म भस्म होते जा रहे हैं। संकल्पों से ही हमें अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाना है। संकल्प क्या है, हमारी बुद्धि का भोजन है ना, तो संकल्प शक्ति जो है हमारे परिवर्तन का आधार है, ये हमारे जीवन को अलौकिक बनाने का ये आधार है, ये दर्पण है ये। तो मैं कौन हूँ, ज्वालामुखी योगी हूँ, उसमें कुछ भी डालेंगे तो क्या होगा, तुरंत भस्म हो जाएगा। जैसे हमने संकल्प किया मैं ज्वालामुखी योगी, तो सारा किचड़ा सब जन्मों का खत्म भस्म, अब एक नए जीवन का उदय हुआ है, एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। संसार में भी ऐसे कई कोर्स कराते हैं तो रोज यही कहते हैं कि रोज उठते ही सोचे कि मैं एक नया जन्म ले रहा हूँ। भी बाबा भी हमको क्या कहते हैं, रोज सोचो मैं अवतारित आत्मा हूँ परम धाम से, अभी अभी ऊपर से उतरी हूँ, जस्ट अभी ऊपर से उतरी हूँ, तो ऊपर से क्या लेके आया हूँ मैं, बोध देखो साथ में, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म एनर्जी, वो स्वीट साइलेंस वर्ल्ड की पूरी शांति लेकर अवतरित हुआ हूँ। किसके लिए, संसार को बांटने के लिए। बाबा ने कहा ना, तुम संदेश वाक फरिश्ते हो, है ना, तो ज्वालामुखी योगी हूँ। नेक्स्ट कर्ण करावन हार हूँ, आज की मुरली में था ना, जब बच्चे कर्ण करावन हार भूल जाते हैं तो थकावट होती है, तो कर्म करते भी ये सोचना है कि बाबा मेरे हाथ पकड़े कर्म करवा रहा है, मैं आत्मा भी कर्ण करावन हार हूँ, मैं आत्मा शरीर के द्वारा करवा रही हूँ, दूसरा बाबा कर्ण करावन हार है, मेरे हाथ पकड़ कर बाबा कर्म करवा रहा है, तो उसमें ताकत भर जाएगी, उसमें खुशी होगी, है ना। नेक्स्ट मैं लक्की एस सोल हूँ, लवली सोल हूँ, संसार की सबसे लक्की एस सोल हूँ। कितने लक्की हैं अपन लोग, ऐसा ज्ञान मिला किसी को संसार में, तो अपने लक का भी सिमरन करना है। संसार में भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं, और हम भगवान ने हमको कहाँ बैठाया, यादों के आंचल में, अपने किरणों के बाहों में, लेकिन विस्मृत होते हम रावण की बाहों में चल जाते हैं, माया की बाहों में चले जाते हैं। तो ये स्मृतियां हमको एकदम तरोताजा कर देती, रिफ्रेशमेंट का साधन है ये। सेवा भी क्या है, खेल है ना, तो बाबा ने खेल में क्या होता है, रिफ्रेशमेंट होती है। भले कोई कितना भी थका हो, अगर उसको क्रिकेट का बहुत शौक है तो वो क्या करेगा, टीवी ऑन करके भी देखना चालू कर देगा, खेलने का शौक है तो जाके खेलना भी चालू कर देगा, सलाइन लगी तो भी खेलते हैं, देख लेते हैं टीवी, देख लेते खेल लेते हैं तो वहां शौक है ना। ऐसे इस ज्ञान को भी हमको अपने जीवन का शौक बना देना है, तो इसमें रुचि बढ़ेगी, है ना। जिस चीज में बाबा ने कहा ना, रुचि होती है तो अपने आप स्वतः होती है। तो सेवा भी एक खेल है, रिफ्रेशमेंट का साधन है। तो हम कर्ण करावन आत्मा है, लक्कीएस्ट लवलीएस्ट सोल है ना। नेक्स्ट हम मेहमान आत्मा है इस संसार में, हम थोड़ी देर के लिए मेहमान है, कुछ पलों के लिए है, जाना तो है ये सबको पक्का ही है, आज नहीं तो कल, पता नहीं सवेरे आंख खुलेगी नहीं खुलेगी, भरोसा तो है नहीं, ये भी नहीं भरोसा, यहाँ से बाहर भी निकलेंगे, भरोसा थोड़ा नहीं है। तो हर पल हर घड़ी अंतिम अंतिम घड़ी, कौन कहता था ऐसे, मम्मा, तो कभी भी जा सकते हैं, किसी को भी बुलावा आ सकता है, तैयार हैं सभी, एव रेडी है यहीं से जाने के लिए, है ना, यहीं से सारे उड़ जाएं तो कितना अच्छा होगा, फिर बाहर वाले आके देखेंगे, लाएंगे इनको क्या हो गया, इधर इधर से चलेंगे सारे कितना अच्छा दृश्य होगा, है ना। तीसरी ले तीसरी नहीं है तो चौथी ला रही होगी फिर वो सोचेंगे कौन सा वायरस आ गया, कोरोना तो है नहीं इनको अदृश्य वायरस ही है ना तो चौथी लहरी यहां से चालू हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, कहां थे, मेहमान है हम, मेहमान का किसी को लगाव नहीं होता है, तो ये बॉडी में भी मैं आत्मा मेहमान हूं, कुछ दिनों के लिए वापस जाना है, मुझे आत्मा का असली घर तो शांति धाम परम धाम ही हूं। नेक्स्ट है निराकारी वर्ल्ड, मैं निराकार आत्मा निराकारी वर्ल्ड की रहने वाली हूं। जैसे हम निराकार सोचेंगे तो निराकारी बाप के साथ जुड़ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है ओके, ऑलवेज ओके, हमेशा ओके, कोई शिकायत नहीं करने की, क्योंकि किसी को हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अधिकतर दुखी कब होते हैं, हम जब संबंध संपर्क में आते हैं, जब हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप कोई खरा नहीं उतरता, या हमारा कहना नहीं मानता है, या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो हम उलझन में पड़ जाते हैं। अब वो टाइम नहीं है अभी छोड़ देने का, अपने को देखना है, ऑलवेज ओके, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, किसी को कुछ नहीं कह सकते, किसी को जबरदस्ती ज्ञान में भी नहीं चला सकते, साक्षी होके देखना है। तो हमेशा ओके रहना, कोई शिकायत नहीं, किसी को गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। नहीं तो अगर वो शिकायती चित्त कैसा रहेगा फिर, उसमें क्या होगा, मक्खी मच्छर पैदा होते जाएंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे। छोड़ो तो छूटे, बाबा ने कहा ना छोड़ो तो छूटे, तो पकड़ के नहीं रखना अपने आप को, अपने देह को भी छोड़ना, दूसरे को क्या पकड़ेंगे। तो दूसरों को परिवर्तन करने की मंशा नहीं रखनी, अपने को परिवर्तन करने की मंशा रखनी है तो दूसरे अपने आप हो जाएंगे। अगर हमको अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है तो, नहीं तो दूसरों की बातों को पकड़ के रखेंगे सारे दिन, वो ही देखते रहेंगे, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसी में हमारा टाइम वेस्ट चल जाएगा। टाइम जा कहाँ रहा है, कहाँ पहुँच गया, किस मुहाने पर हम खड़े हुए आगे। तो ऑलवेज ओके। नेक्स्ट, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो पवित्रता की बरसात निरंतर मुझ आत्मा पर होती जा रही है और मुझसे निरंतर प्योरिटी के वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं, संसार के हर कोने में जा रहे हैं, वो प्रकृति के पांचों तत्वों में जा रहे हैं, कण कण में पवित्रता के वाइब्रेशन समाते जा रहे हैं, क्यों, पवित्रता का सागर मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड है। प्योरिटी मेरे श्वास में समाई हुई है, प्योरिटी मेरी आंखों में समाई हुई है, प्योरिटी हमारी हाथों में समाई हुई है, कण कण में प्योरिटी समाई हुई है, तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन फ्री, कोई क्वेश्चन नहीं करने का, कोई क्वेश्चन ना रहे। ज्ञान का क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन दूसरे कोई क्वेश्चन नहीं, बताया जैसे ये क्यों करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये इन सब चीजों से परे अभी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेंगे अभी, अभी आप विटामिन बताओ आपको, आगे क्या करेंगे। मैं रियल गोल्ड हूं, सच्चा सोना हूँ, हाँ चक्रवर्ती महारानी हूँ, ठीक बोला माता जी ने, तो रियल गोल्ड माना सच्चा सोना हूँ, भगवान की नज़रों में हम कौन है, रियल गोल्ड है ना, बनाने के लिए आया हुआ है, रियल गोल्ड हूँ। नेक्स्ट, स्पेशल सोल हूँ, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ। नेक्स्ट, ट्रस्टी हूँ, है ना, तो ये सारे इक्की विटामिन हो गए। ऐसे सोमान तो कुछ भी कर सकते हैं, विश्व कल्याणकारी, फिर संतुष्ट मणि, इतने सारे सोमान हैं, तो ये सोमान हमारे लिए विटामिन का काम करते हैं। तो मुरली को ना नए तरीके से पढ़ने, जैसे बाबा ने कहा शक्तिशाली याद, अब याद के लिए बीच में बताया नहीं हुआ कि शक्तिशाली याद कैसे करना है, लेकिन उसके लिए तो चिंतन अपने को करना पड़ेगा। तो मुरली को नए तरीके से याद करने का, कुछ शब्द पकड़ लेने, उन पर चिंतन करना, उन पर नज़र दौड़ानी है, ताकि वो बार बार उस पर हम चिंतन करते करते वो सारी प्रॉपर्टी हमारी बन जाए। भगवान हमको प्रॉपर्टी बांटने के लिए आया हुआ है, तो हम क्यों ना उसका पूरा फायदा ले लें। ये तो कहते ना अंत पछता, अंत क्या होता है, जब चिड़िया जू गई खेत, नहीं इसकी पूरी कहावत क्या है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया जू गई खेत, है ना। तो अभी तो खेत में दाना पानी पड़ा हुआ है, नहीं तो जब भगवान पूरा पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, वैसे तो पूरी अब रिवाइज ही चल रहा है, फिर भी हम सबका सौभाग्य कम से कम ये टाइम तो मिल रहा है, आने वाले टाइम में पता नहीं कहाँ फ्लड आ जाएगा, कहाँ चट्टाने गिरी, भरोसा थोड़ा नहीं है, ठीक है। ओके, ओम शांति।